मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 31 जुलाई 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं गुड्डू कुमार महतो, आप दरभंगा बिहार से हैं, रूपेश कुमार पाड़ीग्रही बारगढ़ उड़ीसा से हैं और अनिल सिंह ठाकुर सलामतपुर मध्य प्रदेश से हैं। तो गुड्डू, रूपेश और अनिल, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के रूप में हम लोग असम में जो अभी नेशनल नागरिकता रजिस्टर जो तैयार किया गया है उसको लेकर कुछ बातें करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा में करना चाहूंगा आज के अखबार के एक लेख को लेकर। इनफैक्ट रेडियो न्यूज और डीडी न्यूज में दूसरा कोई ऐसा मुझे तथ्य दिखाई नहीं दिया कि उसको आधार बना करके न्यूज एनालिसिस में उन्हें शामिल किया जा सके, कुछ बात की जा सके। लेकिन न्यूज़पेपर की एक क्लिपिंग है जो नई दुनिया में छपी है और मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं, वो डॉक्टर भरत झुनझुन वाला का लेख है, उस पर मैं थोड़ी सी बात जरूर पहले करना चाहूंगा। मित्रों मैं इससे पहले भी कह चुका हूं और यहां फिर से दोहराऊंगा कि जो डॉक्टर भरत झुनझुनवाला हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं इस मायने में कि जो सिविल सर्विस के स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है मुझे लगता है कि वो उसे बहुत अच्छे से समझते हैं और इनफैक्ट वो लिखते नहीं है, वो समझाते हैं और बाकायदे उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं और बड़े खूबसूरत और बड़े व्यावहारिक उदाहरणों के जरिए समझाते हैं। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर मैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का जैसे ही कोई लेख मुझे दिखाई देता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं और बीच बीच में मैं आप लोगों को याद भी दिलाता रहता हूं कि आप उनके लेख जरूर पढ़ें और केवल पढ़ें ही नहीं बल्कि उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी करें, क्योंकि एक खासियत इनके लेखों की और भी होती है कि वो कुछ एक नया उपाय सुझाते हैं, एक नई दृष्टि देते हैं। मतलब पहले वो समझाएंगे और समझाने के बाद फिर वो कुछ नए तथ्य देंगे आपको जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का जो लेख है वो है सेवा से संवरेगी गांव की तस्वीर, कि जो हमारे गांव का जो आर्थिक परिदृश्य है वो मूलतः सर्विस सेक्टर से संवरेगा। आपको मालूम है कि सरकार ने वायदा किया है कि 2022 तक हम अपने किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे और उसके लिए सरकार जो अभी तक खासकर कदम उठाती रही है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं जानबूझ करके कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको ये पता लग सके कि किसी लेख से आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कौन सी चीजें कौन से बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो सरकार अभी तक जो नीति रही है सरकार की वो ये है कि कृषि का उत्पादन बढ़ा दिया जाए, अगर कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा तो किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। सामान्य रूप में सोचिए तो सही भी लगता है, मान लीजिए कि एक एकड़ जमीन में 10 क्विंटल गेहूं हो रहा है, अगर उसको 20 क्विंटल कर दिया जाए तो आमदनी जो है ना किसान की दुगनी हो जाएगी, लेकिन इनफैक्ट ऐसा होता नहीं है। इस बीच में सरकार ने इसके लिए सारी कोशिशें की, सिंचाई की सुविधाएं प्रोवाइड की गई, आप देख रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है और नो डाउट कि इसकी वजह से अनाज का उत्पादन बढ़ा भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात यह है कि किसानों की आय नहीं बढ़ी और आप घटनाएं सुनते हैं किसानों के आत्महत्याओं को लेकर के, किसानों के आंदोलन हो रहे हैं, सरकार किस तरीके से स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रही है, वो सब आपके सामने है। इसके बाद जो दूसरा सेक्टर आता है वो है कि कृषि से जुड़े हुए दूसरे जो क्षेत्र हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा किया जाए, उनमें सुधार किया जाए, जिसमें एक दुग्ध उत्पादन है जिसका उल्लेख उन्होंने किया है। दुग्ध उत्पादन में सरकार ने क्रांति की और दूध का उत्पादन भारत में बहुत बढ़ गया, लेकिन जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है वो ये है, आप जानते हैं कि अगर मांग से सप्लाई अधिक हो गई तो वस्तु की कीमत गिर जाएगी। दूध के मामलों में भी यही हुआ, खाद्यान्न के मामलों में भी यही हो रहा है। हमें जितना अनाज नहीं चाहिए उससे ज्यादा अनाज का उत्पादन हो रहा है और हमें जितना दूध नहीं चाहिए उससे ज्यादा दूध का उत्पादन हो रहा है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि इन वस्तुओं के दाम गिरते चले जा रहे हैं और किसानों की लागत बढ़ती चली जा रही है क्योंकि उन्हें रासायनिक खाद और इन सब का उपयोग करना है। तो जो पर्पस था किसानों की आय को बढ़ाने का, वह इससे सिद्ध नहीं हो पा रहा है। अभी तक का तो जो अभी परिणाम अभी तक के जो हमारे सामने है वो ये है। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? ये तरीका उन्होंने सुझाया है और ये बताया है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां सेवा क्षेत्र को बढ़ाया जाना चाहिए। इन्होंने एक उदाहरण दिया है अमेरिका का, कि अमेरिका की हालत यह है कि वहां की जो टोटल आय है, जीडीपी है, उसमें 90% सर्विस सेक्टर का है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1%। ये अमेरिका की बात नहीं है, आप अगर यूरोपीय देशों को देखेंगे तो वहां भी जो कृषि की जो टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है कृषि का, वो 2-4% से अधिक नहीं है, बस 4% मैक्सिमम 4%। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? तो मतलब ये 2-4% जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो अपने वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी है उससे उनकी खाद्यान्न की जरूरतें पूरी हो जा रही हैं, बल्कि यहां तक कि वो तो बाहर भी भेज रहे हैं खाद्यान्न, और बाकी लोग दूसरे सेक्टर में लगे हुए। अमेरिका में 90% लोग सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं। और देखिए, जब मैं सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूं तो आपको मालूम है कि सर्विस सेक्टर आप किसे कहते हैं? पर्यटन सर्विस सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर है, डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचिंग, ये सब के सब सर्विस सेक्टर है। तो इन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी भी जो जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है दैट इज नियर अबाउट 14%, करीब 14% है। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि इस 14% कंट्रीब्यूशन में हमारी आबादी का लगभग 55% भाग लगा हुआ है। सोचिए कि 55% लोग जीडीपी में सिर्फ 14% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस आंकड़े से आपको नहीं लगता कि किसानों की स्थिति खराब दिखाई दे रही आंकड़ों के आधार पर? तो मित्रों, इन्होंने कुछ उपाय सुझाए हैं। इसमें जो बहुत अच्छा उपाय है वो ये है कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। आप पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, मैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जो विदेशी हैं वो इस चीजों को बहुत महत्व देते हैं, होम स्टे को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि घर में जाकर के रुकना पसंद करते हैं, तो फिर वहां से उनको खाना मिल जाएगा, फिर गांव के लोगों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। मैं एक चर्चा करना चाहूंगा, लगभग करीब तो 11-12 साल पहले की बात है, मैं गुजरात गया था, तो हम लोग गुजरात गए थे, तो गुजरात में एक गांव था, उस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में बनाया था। उस तरह से देखने लायक कुछ नहीं था, लेकिन वहां की जो पंचायत थी वो वहां पर उन्होंने टेंट के कमरे बना रखे थे और लोग वहां जाते थे, बकायदे रुकते थे, फिर उनको खाना पीना सब गांव वाले ही मिलकर के करते थे। उसके गांव ने एक कोऑपरेटिव तरीके का बना रखा था और उससे वो जो भी है सारा संभालते थे और जो आमदनी होती थी उसे आपस में बांट लेते थे, और इससे उस गांव की आर्थिक हालत बहुत अच्छी हो गई थी। तो इसे होम स्टे जैसा आप कुछ कह सकते हैं। और बाकी उन्होंने कुछ दूसरे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हो, मैं चाहूंगा कि आप इसे नोट कर लें और जब भी एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो इन्हें आप शामिल करने की कोशिश करें। मित्रों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और वो है असम में विदेशी नागरिक। फ्रेंड्स, अगर आप असम के इतिहास से थोड़े से परिचित हों, तो पहला तो मैं ये बता दूं कि जो नेशनल नागरिकता जो रजिस्टर है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राइट, ये बेसिकली असम के लिए तैयार किया गया है। और उसमें ये जानने की कोशिश की गई है, इनफैक्ट सरल भाषा में, कि सही मायने में असम के नागरिक कौन हैं। ऐसी कोशिश असम में क्यों की गई है? देखिए, जब आप नक्शे पर असम को देखेंगे तो पाएंगे कि वो इधर बांग्लादेश से बिल्कुल सटा हुआ है, बहुत लंबी रेखा बांग्लादेश से मिलती है, हमारी सीमा रेखा। और मुश्किल ये है कि सड़क के पता लगा एक तरफ बांग्लादेश है और दूसरी तरफ असम है, यानी कि यह सीमा रेखा ऐसी है जिसमें कोई स्पष्ट प्राकृतिक विभाजन नहीं है और कोई कृत्रिम विभाजन भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ आना जाना बहुत आसान है, और ये असम में शुरू से होता रहा है, देश के विभाजन के बाद लगातार। जब देश का विभाजन हुआ था तो आपके इस असम और पश्चिम बंगाल से बहुत से लोग वहां बांग्लादेश में चले गए थे, जो उस समय पाकिस्तान का हिस्सा था। आपको मालूम है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध से फिर ये बांग्लादेश का जन्म हुआ है, 1971 में। तो हुआ ये मित्रों कि खासकर 1971 के आसपास, 70 खत्म होने 71 की शुरुआत में, जो पाकिस्तान था, ये जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, यहां उस समय तो यहां पर एक तरीके से जो पाकिस्तान का जो पश्चिम पाकिस्तान था, उन्होंने अपना दमन का कार्य शुरू किया। उसके राजनीतिक कारण थे, उस पर हम लोग नहीं जाते। तो उस दमन के कारण एक तो यह है कि वहां स्वतंत्रता की मांग जोर पड़ने लगी, मुक्ति वाहिनी वगैरह बन गई कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और बहुत से लोग उसी दौर में असम में आने लगे, भारत में आने लगे कह लीजिए, क्योंकि वहां उनको परेशानी हो रही थी। तो बहुत से शरणार्थी उस दौर में भारत आए। आने के बाद फिर वो यहीं रहने लगे, कुछ लोगों ने अपना वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा लिया, कुछ लोगों ने राशन कार्ड में नाम शामिल करा लिया, कुछ लोग और अंदर की तरफ घुस गए, कुछ लोग दूसरे राज्यों में चले गए। तो ये सारी प्रॉब्लम हुई। तो हुआ ये कि स्पेशली पूरे नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन खासकर असम में, जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन था वो कंपोजिशन गड़बड़ा गया। मतलब शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में आ गए। असम के लोगों को इससे परेशानी होने लगी, क्योंकि उनकी जमीन उनके पास जाने लगी, जो रोजगार के अवसर थे उसमें वो लोग शामिल होने लगे। तो एक तरह से असम में यूं कह लीजिए कि अनरेस्ट की शुरुआत हुई, मतलब एक तरह से असंतोष की शुरुआत हो गई। और लगातार ये मांग की जाने लगी कि जो शरणार्थी हैं, जो बाहर से आए हैं, इन्हें निकाला जाए। और देखिए, अगर वैधानिक रूप से देखें तो उनकी मांग गलत नहीं थी। जब आप असम का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक बहुत बड़ा आंदोलन मिलेगा जिसका आल असम स्टूडेंट यूनियन कहते हैं, असम गण परिषद। ये जो यूनियन थी, इसने बहुत लंबा आंदोलन चलाया, 1979 से आंदोलन चला और लगभग 6 साल तक चला। फिर जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे 1985 में, फिर इनके साथ एक समझौता हुआ, उसमें कई क्षेत्रीय संगठन भी शामिल थे। और उस समझौते में ये कहा गया कि 1971 के बाद से जो भी लोग असम में आए हैं, बाहर से जो लोग आए हैं, उनकी पहचान की जाएगी और पहचान करके उन्हें वापस भेजा जाएगा, कुल मिलाकर के ये था। लेकिन ये काम नहीं हो सका, है ना। अब उसके दूसरे बहुत से कारण होते हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन असम में जो असंतोष था वो इससे कम नहीं हुआ, लगातार असंतोष बढ़ता चला गया। आपको ध्यान होगा कि जब अभी असम में चुनाव हो रहे थे राज्य के, विधानसभा के, तब बकायदे भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि हम विदेशियों की पहचान करेंगे। वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। 2015 में बकायदे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी निगरानी में ये काम सौंपा गया कि जो नेशनल रजिस्टर है, नागरिकता रजिस्टर, उसको अपडेट किया जाए। और वहां से फिर उस काम की शुरुआत हुई। और उसके लिए फिर एनआरसी केंद्र खोले गए और वहां लोगों से एप्लीकेशन मंगाए गए और सब उनकी जांच परख की गई। तो पहली जो लिस्ट थी इससे पहले जारी की जा चुकी थी 1 जनवरी को, और अब वो फाइनल लिस्ट जारी की गई है। और बाकी फिर आप बकायदे न्यूज में सब सुन ही रहे हैं, तो उसे उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और एक आंकड़ा यही है कि जो अभी लिस्ट जारी की गई है उसमें जो टोटल संख्या है, उसमें से लगभग 40 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम इसमें नहीं पाए गए हैं। और इसकी जो डेट रखी गई है मित्रों, वो आपको मालूम होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो ये है कि जो 24 मार्च 1971 तक जिनके नाम वोटर लिस्ट में है वो असम के नागरिक माने जाएंगे, मतलब भारत के नागरिक माने जाएंगे, सॉरी। और इसके अतिरिक्त भी 12 और दूसरे तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप उनमें से भी कुछ दे देते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है, बैंक का पासबुक है, तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, आप उससे पहले भी भारत में रह रहे थे, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और यदि किसी दस्तावेज में उनके पूर्वज का नाम है लेकिन इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि आपको साबित सिद्ध करना होगा कि आपकी रिश्तेदारी इनके साथ रही है। तो फ्रेंड्स, इस पर अब लेख आने शुरू होंगे, एडिटोरियल कमेंट भी आने शुरू होंगे। कुछ एडिटोरियल कमेंट्स आ गए हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आगे अब जिस तरीके से ये घटना बढ़ेगी उस हिसाब से हम लोग इस पर बातें करेंगे। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मुझे कुछ मेल मिले हैं, उनके मैं कुछ उत्तर देना चाहूंगा। कुछ एक स्टूडेंट ने जानना चाहे कि AFE का क्या मतलब है, AFEIS.com में कहता हूं, A फॉर एकेडमी, F फॉर ई एक्सीलेंस, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस, ये AFE का फुल फॉर्म है। बहुत से स्टूडेंट ने सिलेबस के बारे में जानना चाहा है। मित्रों, सिलेबस के लिए मेरे YouTube पर ऑलरेडी प्रोग्राम्स हैं, उसमें मैंने डिटेल में सिविल सर्विस का सिलेबस डिस्कस किया है। आप YouTube पर जाकर के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मैडम से भी पूछते हैं और मेल भी आते हैं कि हम आपकी किताबें खरीदना चाहते हैं, हम कैसे खरीदें। तो उनके लिए सूचना यह है कि जो किताबें हैं मित्रों वो amazon.com पर अवेलेबल। अगर आपको किताबों की दुकान में नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। और जो छोटी जगहों पर है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अब अमेजॉन बाकायदे स्पीड पोस्ट से छोटी जगहों पर भी किताबें भेजता है, तो आप मंगा सकते हैं। एक स्टूडेंट का है कि उन्हें अखबार पढ़ने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्या करें, बहुत ज्यादा समय है। अखबार पढ़ने में आपको 1 घंटे से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। अगर 4-5 घंटे लग रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप अखबार को सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि पूरा अखबार पढ़ना चाहिए, जो बहुत ही गलत है। आपको 1.5 घंटे, 1 घंटे से अधिक अखबार को देने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: प्रभाकर कुमार माचवे अलीगंज बिहार से, लालजी मोदी न्यूजीलैंड से, के बी अमीना, अनिल कुमार, श्रुति अग्रवाल और लक्ष्मण राम। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।